ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर इन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, तो तुम्हारी तरफ से इन पर कोई इद्दत लाजिम नहीं जिसके पूरा होने का तुम मुतालबा कर सको, लिहाजा इन्हें कुछ माल दे दो और भले तरीके से रुख्सत कर दो। ऐ नबी, हमने हलाल की तुम्हारे लिए तुम्हारी वो बीवियाँ जिनके मेहर तुमने अदा किए, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मलकियत में आईं, और तुम्हारी वो चचाजादा और फूफीजादा और मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की। देखिए, हिजरत की शान पता चल रही है कि अल्लाह अपने नबी को उन औरतों के नाम के साथ हिजरत की बात करवा रहे हैं, और वो मोमिन औरतें जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी इसे निकाह में लेना चाहे, ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं। हमको मालूम है कि आम मोमिनों पर उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हदूद आयद की, तुम्हें इन हदूद से हमने इसलिए मुस्तस्ना किया, एग्जेम्प्ट किया, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी न रहे, और अल्लाह गफूर रहीम है। तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में कोई हर्ज यानी मुजायका नहीं। इस तरह ज्यादा तवक्को है कि इनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा होंगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, अल्लाह आलिम व हलीम है। इसके बाद तुम्हारे लिए अब दूसरी औरतें हलाल नहीं। कब? जब आपकी बीवियों ने आपको चूज कर लिया, उसके बाद फिर आपकी कोई और शादी ना हुई, और ना इसकी इजाजत है कि इनकी जगह और बीवियां ले आओ, ख्वाह इनका हुसन तुम्हें कितना ही पसंद हो। अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें इजाजत है, अल्लाह ताला हर चीज पर निगरान है। अब यहाँ देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की बात हुई, इसको भी आज के दौर में एक बहुत बिग इशू बनाया जाता है। हालांकि 1400 साल तक, यानी ये ऊपर के 38 साल उतार दीजिए जो भी चल रहे हैं, 38 ईयर, 1400 ईयर्स तक नबी सल्लम से लेकर कभी ये इशू नहीं हुआ। अल्लाह के नबी मदीना में मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन उबई दुश्मन था ना, उस वक्त भी 300 लोग तोहद के मौके पे हलाक हो गए, तबूक के मौके पे उन 70 लोगों की बात की। यदि मत सोचिए कि अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द के लोग सारे ही आपको बहुत एडमायर करते थे, किसी एक ने इस बात पे सवाल नहीं उठाया कि आपकी इतनी शादियां क्यों हैं। अजवाज इतनी खुश हैं कि नबी इख्तियार भी दे रहा, छोड़ दो तो नहीं जा रही। अबू बकर इतने खुश हैं जिनकी बेटी आयशा आपके हुए निकाह में, उमर फारूक इतने खुश हैं कि जिनकी बेटी हफ्सा आपके निकाह में, और आज किसी को ज्यादा ही तकलीफ है नबी की शादियों पे। और रंगीरा रसूल और अल्लाह माफ करे कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं, और हम सर शर्म से झुकाए रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है ना। देखिए, सीरत पढ़िए। आपको इंशाल्लाह रमजान के बाद में भी कोई अल्लाह ने मौका दिया तो एक पूरा टॉपिक है उसमें सिर्फ आपके अजवाज का, उसको जरूर शौक से पढ़िएगा। क्यों? आपके बाप पे कोई बात करे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी माँ पे कोई बात करे तो अच्छा लगेगा। तो क्या आज हमने खुद और अपनी नस्लों को अल्लाह के नबी की इतनी मोहब्बत भी नहीं दी कि लोग जो मर्जी बोलें और हम उसका दिफा कर सके? हर शादी के पीछे हिकमत थी। ये एक लंबा टॉपिक है, इसकी तफसीर आप इन्हीं आयतों के किसी भी जाके सेशन में, सबीरुल जन्ना या आप नूरुल कुरान के सेशन में सुनिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा। हर शादी के पीछे रस्म टूटी या आपने उम्मत के अंदर कोई सहूलत पैदा की, बस दुआ कीजिए कि हमें अपने नबी की जात पे यकीन आ जाए और हम अपनी शर्मसारी खत्म कर दें। फिर आप देखिए, इन आयात में एक और चीज थी कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया था कि चूंकि आप बहुत मसरूफ हैं तो आप अपनी बीवियों के मामले में अगर अदल नहीं कर सकते तो इट्स ओके। यानी आमतौर पे तो यही होता था कि एक दिन एक के साथ, दूसरे दिन दूसरे के साथ, लेकिन फरमाया कि अगर चाहें तो आप किसी के पास ज्यादा रह लें, कम रह लें, क्योंकि एक बंदा बहुत मसरूफ है, वो उस तरह से घरदारी के सिलसिले नहीं चला सकता जैसे आम चलाते हैं, लेकिन आपने इस चॉइस को कबूल नहीं किया। हर रोज अपनी बीवियों के घर में से एक चक्कर लगाते, असर से मगरिब के बीच में सबके घर में जाते और आखिर में उसके घर जाते जिसके पास रहना होता। आपने तो इतने प्यार से उनको रखा हुआ, और आप कभी अल्लाह के नबी के अपनी बीवियों से मामले तो देखें, क्या रोमांटिक कपल और क्यूपिड कपल का नाम आपने सुना होगा। इतनी मोहब्बत थी आपके घराने में। ये तो आज हम सारा कुछ ले दे के वैलेंटाइन पे फूल भी दे देते, एनिवर्सरी पे डायमंड की रिंग भी दे देते, फिर मुंह नहीं सीधे होते, क्योंकि हमने चीजों को सिर्फ शो ऑफ करने पे बात कर दी। तो अल्लाह के नबी की शादियां दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कम से कम आपके और मेरे दिल में इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ताला हमें इल्म लेने वाला बना दे। अब हजरत जैनब से जब शादी हुई, निकाह का मौका था, वलीमा हुआ, आपने वलीमा किया। अब वलीमे की दावत थी, जाहिर है छोटे छोटे घर होते थे, लोग आए और बैठे, और जो बैठे तो फिर बैठे ही रहे, जैसे माशाल्लाह हम बैठते हैं दावतों के बाद। घर वाले की जान पे बनी होती है, जाओ जरा मैं समेटूं साफ करूं, बैठे रहते हैं। अब अगली आयतों में देखिए, नबी की शादियों से कितने एटिकेट सिखा दिए कि किसी के घर में जाओ तो ज्यादा देर ना बैठा करो। कैसे, या अय्युहल्लज़ीना ला तदखुलू बुयूतन नबीश, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो नबी के घरों में बिना इजाजत ना चले आया करो। पहला बात, हजरत जैनब से निकाह के मौके पर, या आप जैनब से वलीमे के मौके पे हिजाब की आयतें नाजिल हुई। ये एक खास बरकत है इस निकाह में। आप देखें कि क्या क्या चीजें हैं ये। फिर वही बात है, सीरत आती है तो मेरे दिल में भी कुछ होने लगता है और मेरी जुबान भी कुछ ज्यादा ही उसमें बोलने लग जाती है। लेकिन आप देखिए कि हर शादी के पीछे इस्लाम के अहकाम मिले। पर्दा आराम आराम से आया था, तो हजरत जैनब की शादी का मौका था, यानी जैनब से जब वलीमा था तो उस मौके पर आयत उतर गई कि अब ऐसे नहीं जा सकते जब तक के इजाजत ना लें। दूसरा अदब, ना खाने का वक्त ताकते रहो, यानी कि खाने के वक्त पे एन पहुंचो ताकि खाना खा कर आए। जैसे घर से कहते हैं बच्चों से, चलो खाना ही खा के आएंगे, अंकल के घर जा रहे हैं, और बच्चे भी जाते ही कह देते हैं मामा कह रही थी खाना उधर ही खाएंगे, और फिर घर आके जो उस मासूम की मासूमियत पे जरब आती है अल्लाह की पनाह, तो कहा नहीं, एन टाइम पे बगैर इजाजत के खाने के ना जाओ या बैठे ना रहो कि अब खाना पकेगा। हाँ, कैसे खाओ फिर? हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर आओ। असल बात यह, हलाल काम की दावत कबूल करनी चाहिए। इसलिए हर एक को दावत देनी नहीं चाहिए कि जो कबूल ना कर सके। सबसे बड़ा इस वक्त इश्यू जो चल रहा है, मुझे लगता है कि पढ़ने पढ़ाने के बाद, वो यह है कि किसकी इफ्तारी को एक्सेप्ट करें किसकी नहीं। तो मैं तो आज सबसे इज्तमाही तौर पे एक्सक्यूज करती हूँ कि ना बुलाएं ताकि ना ना करनी पड़े, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। और आप देखते हैं भागते दौड़ते ये सब कुछ होता है, सारी दावत इकट्ठी मिलके ईद वाले दिन कर लेते हैं। सारे बनाएं कोई प्लान, किसी खुले मैदान में चलें या किसी बड़ा से हॉल में जाएं, और वहां मिल के सारे ईद वाले दिन ईद भी मनाते हैं और इंशाल्लाह वहां खाना भी खा लेंगे, लेकिन इफ्तारियों से माजरत के साथ। चलिए, मगर जब खाना खा लो, अगला अदब देखिए, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ। क्यों? बातें करने में ना लग जाओ। अब क्या है, चाय, ठंडा कावा, इलायची, पान, सुपारी, फिर उतने दिन में फिर भूख लग जाती, कहते हैं फिर को बचा हुआ नहीं है जरा लाना, चलो फिर आप इफ्तारी क्या अफसारी करके ही जाते हैं। अच्छा अदब नहीं है। अल्लाह के नबी झिझक रहे थे, शर्मा रहे थे कि अब ये जाएं। जाहिर है कि थकन भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है, लेकिन लोग बैठे हैं तो बातें कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि नबी तो नहीं बोलेगा, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ देती हैं। मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते। कितनी मुरव्वत वाले थे हमारे नबी, कितना उनके अंदर लिहाज था, मुंह फट नहीं थे, बदतमीज भी नहीं थे। आज कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड के तौर पे बदतमीज हो जाते हैं, चले जी जल्दी जल्दी करें, और कुछ अल्लाह रहम करे अभी मेहमान ने प्लेट खाली की है कि जरा कुछ और लो, तो प्लेट उठा लेते। इतनी भी जल्दियां ना करें। मेहमान बैठे हैं जाके बर्तन धो रहे हैं, बहुत बुरा मैनर है। ऐसे लगता है सुबह से थकी हुई हो ना, बैठी हो ना, नींद नहीं आई, फिर रात को भी सोना है। इंतहाई नासमझी की बात है जो बहनें मेहमानों के सामने ये करें, बहाने बहाने से ये फील कराना कि आपने हमें बड़ी तकलीफ दी है, 3 दिन से पका रही हूँ, गोया के 3 दिन पुराना खाना आपको खिला रही हूँ। एक पकाइए, मोहब्बत से पकाए। कौन कहता है इतने 10 खाने पकाए, आप दाल सब्जी बनाए, आए बैठे मिल के खाते हैं, बाद में एक एक प्लेट धो लेंगे, खत्म हो जाएगी बात। और मैंने अमेरिका में ये चीज बहुत देखी, खाना खाने के बाद सारी सिस्टर्स उठती हैं, कोई ट्रैश पकड़ लेती है, कोई बर्तन उठाती है, जाने से पहले घर वाले का घर साफ सुथरा चमकता हुआ। हमारे घरों में ऐसे करे, कहते लो मासी हैं हम, कोई इतने अच्छे कपड़े पहन के आए, हम ये करें नहीं। देखिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इस्लामिक अदब तो देखिए। मैं ये सारी चीजें जब शेयर करती हूँ तो मैं कहती हूँ इस्लाम से ज्यादा मुहज्जब दीन कोई नहीं है, अल्लाह करे कि हम इस पे अमल करें। फरमाया, तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ देती हैं, मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते। अल्लाह हक बात कहने में नहीं शर्माते। नबी की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। ये क्यों भाई, क्या हुआ? इधर सहाबा, उधर अजवाजे मुतहरात, उनके दिल पाक, इनके पाक। अल्लाह कहता नहीं, ये तुम्हारे और इनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज्यादा मुनासिब तरीका। कैसे? आप देखिए कि आज हमारे घर के अंदर पर्दा करना सबसे मुश्किल है। लो, कैसी बहू घर में आई, देवर से पर्दा करती, जेठ से पर्दा करती, ये मामू ससुर से पर्दा करती, और देखो इसने तो घर को ही बांट दिया, बंटवारे कर दिया। अब तो सारे मेरे बच्चे ही परेशान फिरते हैं, क्या घर में पर्दे का माहौल बन गया है, अब किधर जाएं क्या करें। देखिए, नबी की बीवियां, आज लोग एक और उजर भी देते हैं, कहते हैं कि हमारे मर्द कोई गंदे, हमारे मर्द तो बड़े पाक हैं। तो सवाल पैदा होता है कि नबी के अजवाज के पास कौन आता जाता था? हजरत अनस आते थे, 100 साल की उम्र पाई, अल्लाह के नबी की दुआएं ली, 100 के करीब हाफिज़ कुरान उनकी नस्ल से आए। क्या क्या उनका दिल पाक था कि आज के मर्दों का पाक है। ये बात बहस में ना डालें कि आज क्या और कल क्या। अल्लाह ने अपने नबी को जब ये बात बता दी तो मेरे आपके लिए भी यही ठीक है। तुम्हारे लिए ये हरगिज जायज नहीं कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, और ना ये जायज है कि इनके बाद इनकी बीवियों से निकाह करो। आयशा रजी अल्लाह अन्हा 18 साल की उम्र में विवाह हो गई थी, 57 ईयर्स की होके फौत हुई तकरीबन। कितने साल की बेवकी काटी, 18 साल की अपनी बच्ची को देखे शायद अभी बात भी ना ठीक करनी आती हो इतनी छोटी उम्र में। लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि अब इनकी शादियां नहीं होंगी। क्यों? उम्महातुल मोमिनीन, क्योंकि नबी का और उम्मती का एक फर्क होता है। सेम औरत एक पहले नबी के निकाह में हो फिर एक उम्मती के में आ जाए तो ये नबी की शान के खिलाफ था। ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम ख्वाह कोई बात जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह को हर बात का इल्म है। अब यहां जरा सा देखिए, आज इश्यूज तो बहुत लोग उठाते हैं, पर्दा किधर है, कहाँ है? अज़वाजे मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन, और कैसे जाती थी साहबा के सामने मुंह खोल के, क्योंकि पर्दा नहीं है और निकाह तो हो ही नहीं सकता, पर्दे के पीछे से बात करती थी। हजरत आयशा के शागिर्दों की अगर आप तादाद देखें तो एक कसीर तादाद, कहते हैं कि उम्मत को आधा इल्म आयशा ने दिया। किनको देती थी? साहबियों को देती थी। अपने इनके भांजे थे इब्ने उमर, बहन का बेटा था, अस्मा का बेटा था, उनको सिखाते। आप देखिए जितनी हदीसें आपको आयशा से मिलेंगी उनमें अक्सरियत उनके अपने भांजे से। इब्ने उमर देखिए, इब्ने अब्बास देखिए, हजरत उमर को देखिए, बड़े बड़े सहाबी आके हजरत आयशा से मसले सीखते थे। फकीहा उम्मत कहलाती थी, पर कहाँ थी? साइड पे। आप देखिए कि ये दूर की बात छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बरेसगीर पाको हिंद के करीब का दौर याद कीजिए। गोशे का लफ्ज सुना था, गोशा किया हुआ, वो साइड पे बैठकर मर्दों से बात करती थी। जब औरत को मर्द से बात करने की जरूरत भी पड़े तो ये नहीं कि आमने सामने आंखों में आंखें डालकर मजाक के अंदाज में और बेतकल्फी में बात की जाए। आंखों से सारे तासुब के पर्दे फाड़ के अगर आप कुरान सुनेंगे ना तो इतना प्यारा आपको पर्दा मिलेगा अंदर से कि जिसमें हया है। मतलब आपने एक औरत को देख लिया, अब पर्दा खत्म हो गया? नहीं, पर्दा झिझक है, लिहाज है, बदतमीजी ना हो, बद तहजीबी ना हो। आज जब बेतकल्फी के नाम पे जब सबसे मुश्किल पर्दा, लोग कहते हैं बाहर मुश्किल है, मैं कहती हूँ नहीं, घर के अंदर मुश्किल है, जिसको आज हमारे यहाँ शरई पर्दा लोग कहते हैं। हम घरों में, शादियों में, दावतों में, ये तो मामू का बेटा, ये फूफो का बेटा, ये चचा का बेटा, भी मर्द है कि नहीं ये बताओ। अगर वो मर्द है, और याद रखे बाहर वाले से तो तब खतरा है जब आप बाहर है, आप कितनी देर बाहर है, घर में तो खतरा ज्यादा है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें ये मौजू ठंडे दिल और दिमाग से समझने वाला बना दे। अजवाजे नबी के लिए इसमें कोई मुजायका नहीं कि इनके बाप, इनके बेटे, इनके भाई, इनके भतीजे, इनके भांजे, इनके मेलजोल की औरतें और इनके ममलूक घरों में आए। देखिए महरम रिश्तों की लिस्ट है, अब इसमें है देवर जेठ और उनके बच्चे और नंदों के बच्चे, और भाभी के कमरे से नहीं निकलते देवर, और वो तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिदायत दे, घुटने पे बिठा देते हैं जाते ही उसको। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जवान मर्द शौहर से भी बाद दफा लंबा होता है और उसको कह रहा है नई नवेली दुल्हन के घुटने पे रखते, पैसे दोगे तो उठूंगा। ये इस्लाम है? ये जहालत है? ये तबरुजल जाहिलियत लूल है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। ए औरतों, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी से परहेज करना चाहिए। अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। 3 सेकंड बस, आप और रियायत, और मैं और मेरी रियायत। कोई नबी का बीवियों का नाम नहीं, लोग कहते नहीं पर्दे की आयतें हैं ही सारी नबी की बीवियों के लिए। नाउजुबिल्ला, इल्म की कमी, जहालत का इलाज सिर्फ इल्म है। अल्लाह हमें नाफरमानियों से बचाए। अल्लाह और इसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी इन पर दुरूद और सलाम भेजो। क्या पता चला? सलाम, दुरूद भेजो। देखिए मसनून दुरूद अल्फाज और अंदाज दोनों तरीके अल्लाह के नबी ने सिखा दिए। इस पे एक बुक है छोटी सी, दुरूद शरीफ के मसाइल, बिल्कुल मेरा ख्याल है 20-25 सफ़ों की है, तफहीम सुन्ना सीरीज की। आप उसको जरूर पढ़िए, खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 10-15 किस्म के उसमें दुरूद हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, वो बड़ा करें। नमाज का दुरूद तो है ही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, लेकिन चलें टेस्ट चेंज करने को, कभी टॉपिक बदलने को, तो आप उस बुक से फ़ायदा उठाएं। मेरा ख्याल है ऑनलाइन पे उसका लिंक भी होगा और उसके ऑडियोज भी मौजूद हैं। वो बुक हम लोग अपने कोर्सेज में पढ़ चुके हैं। तो दुरूद व सलाम से जो भी मैंने आपको जिक्र में ये बातें कवर करवा दी कि इस दुरूद पढ़ने से मुसीबतें दूर होती, परेशानियां दूर होती, दुख दूर होते हैं, तो कसरत से दुरूद पढ़े। इस वक्त हम सब अपने तौर पे कह देते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, और मैं जब भी दुरूद शरीफ की बात पढ़ती हूँ ना तो मेरी आंखों में पानी आता है। कैसे? ये दुरूद के चंद लफ्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मेहनतों, और उन मोहब्बतों का सिला कभी नहीं हो सकते जो 40 साल तक उन्होंने उम्मत की खैरख्वाही में मुश्किलात सही। तो जब दुरूद पढ़े ना तो दिल की गहराई से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक को महसूस करें, फिर इंशाल्लाह आप ना तो नाफरमानी करेंगी और ना कभी आप उससे बोर होंगे। इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, इन पर दुनिया और आखरत में अल्लाह ने लानत फरमाई है। इस पे गौर करें जरा, आज के दौर में कौन लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, जो इन बातों पे बातें छेड़ते हैं, जो ऐसे इश्यूज को नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं, जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को बेकसूर अजियत देते हैं, उन्होंने एक बड़े बहतान और सरी गुनाह का वबाल अपने सर ले लिया। है कोई बात इसमें ना समझ आने वाली? अल्लाह पे मामला डाल दे उन हर उसका जो अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए कवानीन के ऊपर तनकीद करता है और पाबंदियां लगाता है। आपका मेरा काम यह है कि पूरे शरह सदर के साथ अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानते जाएं। फिर फरमाया, या अय्युहन्नबी युकुल्ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन, ए नबी अपनी बीवी और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए, है पहचान ली जाए। हम तो कहते हैं पर्दा इसलिए करते हैं कि पहचाने ना जाए, तो यहां तो बात उलट है। क्या पहचान ली जाए? कि ये ईमान वाली औरतें हैं, आई एम नॉट अवेलेबल वाली औरतें हैं, आई एम नॉट अ करप्ट वूमेन। यानी औरत का पर्दा औरत की पहचान है कि मैं करप्ट नहीं हूं, आई एम सिक्योर्ड फॉर माई हस्बैंड, मेरा एक अपना स्टाइल है और मैं कोई इतनी बेकार चीज़ नहीं हूँ कि जिसकी सील खुली हुई और तुम खरीद लो। दुनिया में कभी भी कोई चीज़ खरीदने से पहले क्या चेक करते हैं? सील तो नहीं टूटी हुई? कहते हैं मत खरीदिए ऐसी चीज को। आप जूस लेकर आए और घर खोले और ऊपर है ढक्कन लेकिन अंदर की सील टूटी हुई थी, पियेंगे? आपको खुली कैंडी को मक्खियों से भरी हुई पेश कर दे, खाएंगे? आइसक्रीम जो है वो गिर रही है ऊपर से कवर नहीं है और आपको कोई लाके दे, अब खाएंगे? बस ये है औरत का पर्दा। आप दो लॉलीपॉप रख लें, एक के ऊपर कवर और एक खुला, खुली जगह पे छोड़ दें, 1 घंटे में जाके देखें जो खाली थी ना वो भी कवर्ड है, पर किससे? मक्खियों से, मच्छरों से। जब एक औरत अपना डिस्प्ले देती है तो फिर वो कहते हैं है देखने की चीज, बार बार देखो इसको। और मुझे समझ नहीं आता कि ये बात लोगों को समझ क्यों नहीं आती। सारा जिस्म तो पहले छुपा होता है। क्या चीज लोग देखते हैं आपकी मेरी? क्या चीज देखते हैं शादियां करते वक्त? क्या चीज है रिश्ते करते हुए? मैं यार इशू नहीं, ऐसे में नॉन इशू है और इशू बना दिया। और लोगों की आदत ही होती है ऐसे ऐसे फितने खड़े करो। और आप देखिए 3 दफा जिक्र हुआ है सूरत अल अराफ में, मैंने आपको इशारा किया था कि औरतों में औरतें क्या पहने, जीनत की बात वहां, जीनत थी, रीश की बात थी कि ऐसे कपड़े पहनो कि जिससे सतर भी छुप जाए और खूबसूरती भी रहे, कोई हरज की बात नहीं। सूरत नूर में हमने पढ़ा घर के मर्दों में कैसे हो, अपनी चादरें अपने ऊपर डाल लो, बड़ी चादरें लेके बैठ जाओ, अपने आप को थोड़ी सी हया के दायरे में रखो। ये हुक्म है बाहर जाते हुए। एक जुमले में अगर मैं बाहर के पर्दे को पेश करूँ ना तो जो मुझे बहुत आसान लगता है, जिस जगह जिस हुलिये में आप और मैं बैठे हैं, अगर आप स्काफ पहन के बैठे हैं कुछ, यहां से वो बाहर पार्किंग लॉट में जाना है तो उसमें नहीं जा सकते। अब बात करें, नहीं समझ आई? पर्दा क्या है, बाहर का पर्दा क्या है कि औरत घर से निकलते हुए बाहर जरूर कुछ पहनेगी, चादर कह लें, अबाया कह लें, टोपी बुरका कह लें, खिमार कह लें। यहां लफ्ज जिलबाब आया और अरबी में जलाबीब जिलबाब की जमा है, और जिलबाब कहते हैं उस चादर को जो सर पे रखें तो पांव भी छुप जाए। आज हम इसको अरबी बुरका कहते हैं, पूरा ढीला ढाला खुला 8-10 गज कपड़ा उसको लगता है। औरत जिस हालुलिये में उसमें बाहर नहीं जा सकती। अगर आपने चादर यहां ली हुई है बाहर से आए तो उतारें इसको, और अगर यहां से जा रहे हैं और वो सीधी सादी साफ सुथरी कढ़ाई मोती सितारे रंग बिरंगे प्रिंटेड कपड़ों से पाक होनी चाहिए। ये है पर्दे का इशू। अब आपको जितना समझ आए आप उसको उतना समझ गए। ये ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए और सताई ना जाए। अल्लाह गफूर और रहीम है। अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में खराबी है और वो जो मदीना में है जान अंगेज अफवाहें फैलाने वाले, लफ्ज मदीना को देख लें, क्या ये सिर्फ मदीना में खबरें फैलती थी? याद रखिए जिनके दिलों में निफाक होता है वो हमेशा ऐसे इश्यूज पे बात करते हैं। कभी आपके लिए मुसलमानों की नमाजें इशू नहीं बनी, यूएनओ में कोई कानून मुसलमानों की नमाजें पढ़ने पे पास नहीं हुआ होगा, रोजे रखने पे पास नहीं हुआ होगा। ये इशू किसी जगह मीडिया में आपके जिक्र अजकार पे नहीं होगा। इशू ये बनेगा तब जब ये मामलात में आता है, क्योंकि वही बात है कि तरीकतुल मुस्ला सूरह तौहा में पढ़ चुके हैं, गालिबन तौहा थी या शुरा थी। फिरौन ने क्या कहा था कि ये मूसा का अगर दीन आम हो गया तो हमारा ये मिसाली तर्ज जिंदगी और हमारा ये लाइफ स्टाइल जो ये मुतासर हो जाएगा। अल्लाह ताला उनको धमकी देते हैं, अपनी हरकतों से बास ना आए तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुम्हें उठा खड़ा करेंगे, फिर वो इस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे। इन पर हर तरफ से लानत की बौछार होगी, जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। ये अल्लाह की सुन्नत है जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे। लोग तुमसे पूछते हैं क्यामत की घड़ी कब आएगी, कहो इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, तुम्हें क्या खबर शायद करीब आ लगी हो। सोचिए, शायद क्यामत करीब हो और हम अभी तक उसके लिए तैयारी ना हो। बहरहाल ये अमरे हकीकी है कि अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और इनके लिए भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, कोई हामी और मददगार ना पाएंगे। जिस रोज इनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, कैसे आग पे गोश्त को पहले एक साइड से पकाते हैं फिर दूसरी से। और यहाँ नोट कीजिए, चेहरों को आग में डालने की बातें हो रही हैं। यही चेहरा इशू बना हुआ था ना, इसी मसले को नहीं थे हजम कर पा रहे ना। तो अल्लाह कहता है फिर ऐसे चेहरों को क्या कहा, उस वक्त वो कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और रसूल की इताअत की होती। है किसी को कुछ कहने की जरूरत? यानी ये बात को समझ नहीं आ रही? साफ बात समझ आ रही है, मसला क्या था वो अगले जुमले से सुन लीजिए। और कहेंगे, ऐ रब हमारे, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की। लोग कहते हैं हमारे तो खानदान में कोई पर्दा नहीं करता, मेरी तो सास नहीं करती, मेरी तो नानी ने नहीं किया, तो जो पीछे से स्टाइल चल रहा था हम तो उसी में ही हैं, और उन्होंने हमें राह रास्त से बेराह कर दिया। ऐ रब इनको दोहरा अजाब दे और इन पर सख्त लानत कर। कहाँ खड़े होकर बददुआएं दे रहे हैं अपने बड़ों को कि इन्होंने हमारी अच्छी तरबियत क्यों ना की, ये हमारी माएँ जिन्होंने कभी हमें इस मामले में गाइडलाइन ना दी, इन्हीं को गम पड़ा रहता था। देखिए, माने ना माने आपकी मर्जी मेरी मर्जी, लेकिन मुंह खोल खोल कर इस इशू के खिलाफ ना बोले। किसी को जुरत नहीं होनी चाहिए कि इस मौजू पे बात करें। आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बुरा वो मानता है जो करना नहीं चाहता, जो करना चाहता है कोई काम उसको बुरा नहीं लगता। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए तौफीक मिल जाए। मैं हर साल इन आयतों पे, मेरे पास कुछ 6 सफ़ों के नोट्स हैं, उसकी 6 पॉइंट्स शेयर करती होती हूँ कि क्या वाकई ये भी एक पर्दा को इशू है निकाब का। इस साल नहीं करूँगी, आप जाके खुद सुन लीजिए। तकरीबन 10 मिनट की मेरे हेले वो रिकॉर्डिंग ज़रूर होगी कि हर जगह ये बात अकल में आती है। नहीं समझ आती तो सिर्फ एक औरत के नाम पर नहीं आती। डॉक्टर्स मुँह छुपाते हैं जब वो ऑपरेशन करते हैं, सड़कों पे काम करने वाले मुंह छुपाते हैं जब पोल्यूशन का खतरा होता है, कोई इशू नहीं। पायलट मुंह पे हेलमेट पहन लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ इशू तब बनता है जब ये एक स्टाइल के साथ टकराता है। तो तौफीक मांगे, अल्लाह से कहें कि अल्लाह जो चीज़ तुझे पसंद है वो करा ले। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियतें दी थीं, फिर अल्लाह ने इनकी बनाई हुई बातों से इसकी बेगुनाही साबित कर दी और वो अल्लाह के नज़दीक बाइज्जत थे। ऐ अल्लाह आज हमारी भी बेगुनाही साबित कर दे और हमें मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अपने पास बाइज्जत बना दे। फिर अल्लाह ने इनकी बनाई हुई बातों से इनकी बेगुनाही साबित की और वो अल्लाह के नज़दीक बाइज्जत थे। ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो, ऐसे मसलों को तोड़ मोड़ के ना पेश किया करो, ख्वाहिशों की चक्की में पीस के मरूंडा ना बना दो इन अहकामात का। अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। पिछली जिंदगी में जो हुआ छोड़ो, अगले अमाल दुरुस्त कर लो। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, इसने बड़ी कामयाबी हासिल की। अल्लाह और रसूल की इताअत में करेंगे तो कामयाबी। और आज वल्लाह ही ये अगर फैशन बन जाए और मिशेल ओबामा करने लग जाए और चंद और नाम लूँ वो करने लग जाए, काल पड़ जाएगा दुनिया में इन चीज़ों का। मिले नहीं मिलेंगी, ढूंढे नहीं मिलेंगी, क्योंकि फैशन बन गया, इन हो गया। अल्लाह ताला हमें अल्लाह और उसके तरीकों पे चलने वाला बना दे, ना कि दूसरों के कहने पे। और आखिर में अब इस अमानत का जिक्र है जो जिम्मेदारियों की सूरत में और अल्लाह के इस प्यारे कलाम की सूरत में आपके मेरे सामने है इन नारद नलमानत अल समावाती वल जिबाल, हमने समानत को आसमानों जमीन और पहाड़ों के सामने पेश किया तो वो इसे उठाने के लिए तैयार न हुए और इससे डर गए, मगर इंसान ने इसे उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। इस अमानत के बोझ को उठाने का लाजमी नतीजा है ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करे। अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। अल्लाह निफाक से निकाल कर ईमान पे डाल दे। अल्लाह हमारी पिछली कोताहियों को माफ करके आइंदा की इसलाह फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसा बना ले जिस पे उसको प्यार आ जाए।